अब आप तुम्हारी मेरे बेटे अमीन और मामून के बारे में क्या राय है?
मेरी राय यह है कि वो दोनों ही इन फलों की खुशबू और इन फलों के जायके की तरह मुख्तलिफ।
उन दोनों में किसे चाहते हो, अमीन को या मामून को?
मामून को मेरे आका।
क्यों अबा वहाब, जबकि वो दोनों ही मेरे सुल्फ से?
इसलिए कि मामून अकलमंद और चालाक है।
ऐसा क्यों है, जबकि दोनों का उस्ताद भी एक है और दोनों एक ही छत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं?
क्या मेरे आका खलीफा मुशाहिदा नहीं करते, अगर दो मुख्तलिफ चीजों को बाहम मिला दें तो वो ज्यादा मजेदार और खुशबू वाली हो जाती है।
जानता हूँ मैं ये।
क्या खलीफा मोहतरम नहीं जानते कि बाजार कर्ख में दूसरे जानवरों से खच्चर की अहमियत क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो घोड़े और गधे के बाहमी ताल्लुक का नतीजा होता है।
वो पहले वाली मिसाल ही काफी है, दूसरी मिसाल की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा बाबा। हाँ
बहुत थक गई हूँ।
मैं कहता हूँ अगर हमारा कोई,
कहना चाहते हो कि अगर हमारा बेटा होता तो मुश्किल हल हो जाती, क्या ऐसा नहीं?
अब तो ये एक आरजू है, क्या ऐसा नहीं कि बेटा अल्लाह ताला की एक नेमत और हमारी जरूरत है?
अगर हमारा बेटा जिंदा होता तो आज वो कड़ियल जवान होता।
सफर बगदाद ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया, अगर तुम वहीं रुक जाती तो बहुत बेहतर होता।
मुझे बताओ बाबा।
हाँ।
क्या तुम मेरे चचाजाद नहीं हो?
क्यों नहीं?
क्या हमारे आपस में कोई ताल्लुकात नहीं?
क्यों नहीं ताल्लुकात हैं?
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह कि तुम उस हालत से इस हालत में बदल गए।
ये वो नेमत है जो मुझे खुदा ने अता की है। देखो जरा, देखो जरा, देखो ये घोड़ा भी खुदा ने मुझे अता किया। जब इस पर सवार होता हूँ, जब भी इस पर सवार होता हूँ तो ये मुझे कर्ख के बाजार का इस तरह चक्कर लगाता है। बहुत कुछ देखता हूँ, दाएं और बाएं बहुत कुछ।
तुम कर्ख के बाजार में क्या देखते हो, क्या देखते हो?
फकीर लोगों को जो सरमायादार हैं और सरमायादारों को जो फकीर हैं।
उन लोगों की निशानदही करोगे ताकि उन्हें दौलतमंद कर दूं?
तुम कभी भी उन्हें नहीं देख पाओगे।
आखिर क्यों?
इसलिए कि तुम्हारे निगेबान आड़े आते हैं ताकि तुम भी उन्हें ना देख सको, और फिर तुम भी ना अपने दाएं देखते हो और ना बाएं। चल मेरे घोड़े, चल भाग यहां से।
निगेबान मेरे आड़े आते हैं कि सामने न देखूं, और फिर मैं खुद भी दाएं और बाएं नहीं देखता।
शहर में कोई इत्तेफाक हो गया है क्या?
हाँ, लगता है हमारे वाली ने बगदाद में खलीफा के खिलाफ बगावत कर दी है।
और सीबी के लोग?
अक्सरियत उनकी हिमायत में है।
ये इब्तिदा है, कोई नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होगा।
अंजाम यही है कि वाली मुस्तफी हो जाएगा और सीबी के लोग खलीफा के खिलाफ बगावत कर देंगे।
शायद खलीफा बगावत करने वालों को कुचल दे और उसकी जगह जानशीन मुकर्रर कर दे।
कुछ भी हो सकता है वहाँ।
बैठ क्यों गए हो, भेड़ों का क्या करोगे?
उन्हें मैं घर में रखूंगा। क्या पागल हूँ इस बलवे के दौरान भेड़ों को चराहगाह ले जाऊँ?
क्यों ऐसा कर रहे हो?
जंग में कोई लिहाज नहीं होता सलमा, वली इब्ने करीब के हामी बहुत हैं। मेरे पास इन भेड़ों के अलावा कोई सरमाया नहीं।
जंगजुओं की वजह से ले जाने से डरते हो?
क्या नहीं डरना चाहिए?
लेकिन तुम तो इस जंग में किसी के हामी नहीं।
जंग में सब चीजें जायज हो जाती हैं सलमा, सिपाही भूखे होते हैं और कुछ भी कर सकते हैं।
मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की हजूर, मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की हजूर।
नाम क्या है तुम्हारा?
अली इब्ने जहब।
कहाँ से आया है?
सारा है हिजाज से।
चोरी क्यों की?
भूख और प्यास से मैं और मेरी बीवी बयाबान सहरा में मर रहे थे। मैं बगदाद आ गया ताकि किसी से मदद मांगूं।
बोलने दो इसे इब्ने रवि, आगे बोले इब्ने जहब।
मैं जब कर्क के बाजार पहुंचा, बहुत भूखा था। एक कबाब बेचने वाले के करीब गया, उससे इल्तिजा की कि कुछ खाने को दे दे, लेकिन उसने मुझे धुतकार दिया। दो सीख कबाब उठाए और भाग खड़ा हुआ। दरोगा मेरे पीछे भागा और मुझे पकड़ लिया। मैंने उस दौरान एक सीख खा ली।
तुम क्या कहते हो इब्ने रवि?
लेकिन हजूरे वाला, मैंने सिर्फ एक सीख कबाब चोरी की है।
पता नहीं इसके बारे में काम इलाही क्या है।
मैं जानता हूँ।
जो जानते हो कहो बवाब।
अच्छी तरह जान ले हुजूर, चोर दो किस्म के होते हैं, एक पेशावर चोर और एक मजबूर चोर। पेशावर चोर का हाथ काट दिया जाता है, लेकिन जरूरत के तहत चोरी करने वाले चोर के लिए हाकिम वक्त की गर्दन उड़ा देनी चाहिए।
ये हुक्म कहाँ से लाए हो बवाब?
ये हुक्म उसने दिया था जो मुसलमानों का आदिल व मुनसिफ हाकिम था।
मैं तुम्हें इस गलती पर माफ करता हूँ।
खुदा खलीफा की उम्र दराज और इसे बरकत दे।
हुक्म देता हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की खुराक का बंदोबस्त किया जाए।
खुदा खलीफा की तमाम मुश्किलात में इसकी हिफाजत करे।
और तुम्हारी क्या जरूरतें हैं?
खुद भी खाऊंगा और अपनी बीवी के लिए भी लेकर जाऊंगा।
कुछ भेड़े इसे दे दें ताकि ये उन्हें चराए और उनसे फायदा उठाए और दूसरों के माल पर हाथ न डाले।
मैं 10 भेड़े तुम्हें देता हूँ ताकि तुम उससे अपनी रोजी कमाओ।
आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाबे वाला, बहुत शुक्रगुजार।
खलीफा का शुक्रिया अदा करना ही काफी है। चल खड़ा हो जा और जा।
इब्ने रवि इसे बोर्ची खाने में ले जाओ ताकि खुद भी खाए और अपनी बीवी के लिए भी कुछ ले जाए। क्या कहते हो अबा वहाब, ये काम जो मैंने किया है सिराते मुस्तकीम था?
अभी आप सिराते मुस्तकीम तक नहीं पहुंचे हैं हुजूर वाला। चल मेरे घोड़े।
अबा वहाब, जिस आदिल हाकिम का तुमने तस्करा किया था कौन था?
चल मेरे घोड़े, चल चल चल।
ए अबा मूसा, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के लिए 10 बोरी गंदम विरसे में छोड़ी, 6 मेरे लिए और 4 भाई के लिए। फसला चूहों का है। चूहे 10 में से 6 बोरी खा गए हैं। अब हम दोनों उन 4 बोरियों को कैसे तकसीम करें?
बाकी बचे हुए माल पर अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक अमल करो। तुम दोनों का विरसा असल में 10 बोरियां थीं। जो बोरियां चूहे खा गए वो तुम्हारा नुकसान कहलाएगा, और जो बाकी बचे हैं अब असल में वो विरसा हैं। अब तुम ये जानना चाहोगे कि तुम्हारा हिस्सा कितना होगा? तुम दोनों का विरसा 4 को 10 पर तकसीम करो और ज़रब करो 6 से। जो जवाब आएगा वो बनेगा तुम्हारा हिस्सा। इस सूरत में तुम्हारा हिस्सा होगा 2 बोरी और 10/4, बाकी तुम्हारे भाई का।
हाँ। खुदा का शुक्र है,
खुदा का शुक्र है। खाओ बाबा।
ओ बहुत ज्यादा खा लिया।
कहाँ चल दिए?
काफ के बाजार जा रहा हूँ।
सुबह सवेरे वहाँ क्या करने जा रहे हो?
रियाया के मसाइल की देखभाल के लिए जा रहा हूँ।
हमारी जगह बैठकर हमारा काम अंजाम देते हो?
समझ गया। चल मेरे घोड़े चल।
वालेकुम अस्सलाम इब्ने रवि, क्या चाहते हो? अहम और जरूरी? वलीद इब्ने तरीक से भी में हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है, उस चोर का इस काम से क्या मकसद है? वो हमारे दुश्मनों के फरेब में आ गया है, चाहता है उसे नहीं मिलेगा। इब्ने रवि जरा पोश फौज तैयार करो, कल फजर के बाद हम खुद उसके घर पर धावा बोलेंगे।
जो मौजूद है उसे आधा करेंगे मेरे आका, यानी तमाम वो चीजें जो मसला बन रही हैं उन्हें आधा करेंगे, फिर इन दिरहमों का जजर निकालेंगे, हासिल अदद को उससे जरब करेंगे। इस हिसाब से 6.25 दिरहम बनेंगे। उसके बाद निकाला गया जजर उसमें से कम कर देंगे, जवाब 25 दिरहम होगा। उसके बाद 3 दिरहम हासिल होंगे, यानी फिर ये काम आखिर तक जारी रखेंगे मेरे आका।
हम चाहते हैं कि तुम्हारे इस इल्म पर तुम्हें इनाम दें, अपनी राय दो।
हुजूर का वकार बुलंद रहे, हमारा इल्म मुसलमानों के लिए फायदेमंद होना चाहिए, लिहाजा मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं।
हम तुम्हारी इस बात पर तुम्हें दुगना इनाम देते हैं।
अगर जनाबे वाला इजाजत दे तो मैं ख्वारज़मी का इनाम मुकर्रर कर सकता हूँ।
क्या राय है तुम्हारी बाबा?
हुजूर, शतरंज के खानों को जिस तरह मैं बता रहा हूँ गंदुम के दानों से भर दें, यानी पहले खाने में 2 गंदुम के दाने रखकर शुरू करें और दूसरे खाने में इसे 2 बराबर कर दें, फिर तीसरे खाने में दूसरे खाने के 2 बराबर, इस तरह ये अमल आखिर तक जारी रखें।
अफसोस है तुम पर बवाब, तुम ये चाहते हो कि इसकी इल्मियत का इनाम एक मुश्त गंदुम बने?
लगता है जनाबे वाला मुझसे ज्यादा खुश नहीं है।
ये कैसा हंगामा है उबैदा?
लगता है खलीफा के सिपाहियों ने सीबी के गवर्नर पर हमला कर दिया है।
अब वहाब, जरा रुकना।
अब मूसा, क्या तुम एक बुश गंदुम के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो?
मुझे पता नहीं था कि तुम रियाजी में मुझसे बढ़तर हो। जो तजवीज तुमने खलीफा को दी है वो उसे उम्र भर नहीं निभा सकेगा।
क्या खलीफा शतरंज के खानों को तुम्हारे लिए बढ़ सका?
वो कैसे इस काम को कर सकता है? खुदा की कसम, जितना गंदुम उसके इख्तदार में है, दीलम से लेकर ताशकंद तक उसका आधा खाना भी नहीं भर सकेगा।
चल मेरे घोड़े चल भाग।
उबैदा, भेड़ों को चिरागा नहीं ले जाओगे? क्या हो गया है तुम्हें? लगता है कोई भारी जिम्मेदारी है तुम्हारे कंधों पर।
असल में सलमा, पता नहीं इन दिनों में क्यों इतना बेताब हूँ।
एक गवर्नर गया, दूसरा आ जाएगा, सीबी तो अपनी जगह कायम है।
ये सब मेरे लिए अहम नहीं है सलमा, एक गवर्नर का जाना और दूसरे का आना।
फिर क्या सोच रहे हो तुम? क्या हम मियाँ बीवी एक दूसरे के राजदा नहीं?
कोई खास बात नहीं सलमा, दरअसल कल रात मैंने एक ख्वाब देखा था जिसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है।
कहीं कारोबार में कोई नुकसान तो नहीं हुआ?
नहीं।
खुदा का शुक्र है, मेरे दिल को सुकून मिला।
तुम्हारे दिल को सिर्फ तिजारत में फायदे से सुकून मिलता है, तुम्हारा दिल मेरी हालत पर कभी रहम नहीं खाता।
क्या ख्वाब देखा तुमने उबैदा? क्या फिरौन का ख्वाब देखा?
ख्वाब में देखा कि बहलूल ने मुझे कैद कर रखा है।
बहलूल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने अपना डंडा नहीं दिया घोड़े की जगह, क्योंकि तुम्हें तो असल घोड़े की जरूरत है।
लेकिन अजीब बात यह है कि बहलूल मुझे मारना चाहता था और हारून रशीद के दरबारी मुझे बचा रहे थे।
मेरे ख्याल में तुम्हारा ऐसा कोई काम नहीं कि ख्वाब को इतनी अहमियत दो।
पता नहीं क्या मकसद है सलमा, लेकिन इस ख्वाब से मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया हूँ।
जब तक बहलूल तुम्हारा कातिल है, फिक्र की कोई बात नहीं मेरे अजीज शहर।
सुनो ए लोगो सुनो, खलीफा सीबी की जंग में कामयाब हो गया। सुनो लोगो, खलीफा सीबी के गवर्नर से जीत गया, खलीफा जिंदा रहा और गवर्नर मारा गया। लेकिन अगर कल ये हालात बदल जाएं, गवर्नर खलीफा पर कामयाब हो जाएगा और फिर गवर्नर और खलीफा दोनों मर जाएंगे।
अब आप
क्या कहना चाहता है तू?
पहली बात जो तुमने बताई है समझ में आती है, दूसरी बात समझ में नहीं आती। क्या ऐसा मुमकिन है खलीफा और गवर्नर दोनों ही मर जाएं?
अगर गवर्नर खलीफा को मार दे तो फिर वो गवर्नर नहीं रहेगा बल्कि खुद खलीफा बन जाएगा। ए लोगो,
कहां थे तुम इतने रवि? ये तुम लेकर आए हो? उसकी एक वजह है, जब मैं सो रहा था तो बड़ा डरावना ख्वाब देखा मैंने, वही ख्वाब खुशी के बजाय परेशानी का सबब है। खुद को सबीन में पाता हूं, तीन आदमियों के दरमियान जिन्होंने अपनी अपनी तलवारें निकाली हुई हैं, उनका बड़ा वलीद इब्न तरीक था, उनमें दूसरा अबा वहाब और उनमें तीसरा नाम उसका नाम उबैद इब्न नीताही था। ये तीन लोग अपनी तलवारों से मुझ पर हमलावर होते हैं और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। नहीं नहीं इतने रवि, नहीं नहीं, मेरा बाप मेरे जद मंसूर के बारे में कहता था कि अबू मुस्लिम खुरासानी ने उसे बताया था कि उसके मारे जाने से चंद घंटे पहले अबू मुस्लिम ने दो अफराद को ख्वाब में देखा था, उनमें से एक ने गर्दन पर नेजे से वार किया और दूसरे ने तलवार से जर्ब मारी। वो दोनों अफराद भी मेरे जद मंसूर के रिश्तेदार थे। उनमें से दूसरा जो अबा वहाब है, मुझे उससे कोई खौफ नहीं। इसी वक्त जाओ उबैद इब्न सताई को सबीन से हमारे पास ले आओ ताकि उसे यहाँ बुलाकर मालूम करें कि वो क्या चाहता है।
उबैदा,
परेशान ना हो सलमा।
परेशान क्यों ना हो, ना जाने तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं ये।
खुदा पर भरोसा रखो, इन भेड़ों की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। मेरी गैर मौजूदगी में इनकी अच्छी तरह देखभाल करना। अगर बेटा हो तो उसका नाम लईस रखना।
मैं उसका नाम उबैदा रखूंगी।
मेरी बात सुनो।
जुनैद आपकी खिदमत में हाजिर है आका।
तुम्हारी राय उस ख्वाब के बारे में क्या है जिसने मुझे परेशान किया हुआ है?
क्या कोई आम ख्वाब है या खास?
इन दोनों में क्या फर्क है?
आम ख्वाब है मेरे आका, शराब की मानिंद जिसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन खास ख्वाब उस शराब की कहानी बताता है जो असल हकीकत की मानिंद है।
तो मेरा ख्वाब कौन सा है?
ये एक असल मुसल्लम ख्वाब है मेरे आका। आप अमीर खलीफा और तमाम खास लोगों के आका हैं। मेरे आका रशीद, क्या आपने ये ख्वाब दिन में देखा था या रात को?
क्या दिन और रात के ख्वाब में कोई फर्क है?
बेशक मेरे हुजूर, रात का ख्वाब ख्याल और इबहाम है, दिन का ख्वाब एक हकीकत है।
इसका मतलब है कि मेरा ख्वाब एक हकीकत था क्योंकि इसे मैंने दिन में देखा है।
क्या उबैदा मर गया है?
वो खलीफा हारून की कैद में है।
क्या कोई वाकया पेश आया सलमा?
बहुत से मसले हो गए, बेहतर है कि हम यहाँ से कहीं और चले। यहाँ बहुत से जासूस हैं अब्बा वहाब।
क्यों नहीं, चलते हैं, चलते हैं।
खुदा खलीफा को हर मुसीबत से दूर रखे और उसे ताकत और तवानाई अता करे और सब के लिए खैर और बरकत का सबब बनाए। और
बहुत हो गया जुनैद, काफी है, काफी है, काफी है। तुम्हें जो चाहिए दे दूंगा। ये लो।
खुदा हमारे खलीफा को खैर और आफियत अता करे और उसे दुनिया वालों के लिए रहनुमाई का सबब करार दे। शुक्रिया आका, शुक्रिया मेरे आका।
वालेकुम अस्सलाम इब्ने रबी। उसने मेरी परेशानी मजीद बढ़ा दी इब्ने रबी। जुनैद कहता है हुक्मरानों का दिन में ख्वाब देखना पैगंबरों के ख्वाब की मानिंद है। मशकूक शख्सियत है जिसका बातिन उसके जाहिर से मुख्तलिफ है। दूसरी जानिब से वलीद इब्न तलीब का दुश्मन है जो कौमी इख्तिलाफ की वजह से है। और फिर ये कि उसे दोस्ती में बेहिसाब पैसे दिए, कहता है वो उसका दुश्मन है क्योंकि उसने हमारे खिलाफ यानी खलीफा के खिलाफ बगावत की है। किस तरह? नहीं इब्न रबी, नहीं। उसे कैसे मार दूं जबकि उसकी दुश्मनी अभी साबित ही नहीं हुई। वो जेल में रहेगा उस वक्त तक जब तक ये शक और खौफ दिल से खत्म नहीं हो जाता।
उसका गुना इतना था कि वो उस गवर्नर के पास चला गया। काश वो कभी उसके पास ना जाता और अपनी मुश्किलात के हल के लिए उससे मदद ना मांगता।
नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं समझता खलीफा को उनकी मुलाकात का कोई इल्म हुआ हो। कोई और बात हो सकती है।
क्या बात हो सकती है?
मुमकिन है वो खुद को हाकिम या खलीफा शुमार करना चाहता।
मुमकिन है कि अचानक खलीफा बन जाए वो?
क्यों नहीं हो सकता जबकि उसकी भेड़ बकरियाँ भी उसकी पैरवी करती थी।
बेचारा अपनी असल हालत में आ गया। जो भी इसे बताया सब जाया हो गया। और तू बिचारी सलमा, इस दीवाने के अलावा तुझे और कोई नहीं मिला कि अपने दिल के राज उसे बताती। मेरे आका वजीर, میرے آقا وزیر، سلمہ مولی کی بیٹی، سی بی سے۔ میرا شوہر بے گناہ پکڑا گیا ہے، عبید تائی۔
سن لیا فضل؟ اے بابا، یہاں آ کر تم نے یہ بتایا تھا کہ خواب دیکھا ہے، وہ خواب مجھے بتاؤ۔
چاہتا ہوں خواب قاضی جنید کو بتاؤں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ عوام و خاص کے خوابوں کی تعبیر بتانے کا بڑا ماہر ہے۔
تم کیا کہتے ہو جنید؟
یہ ایک پاگل ہے جناب والا، میں اس سے کوئی بحث نہیں کروں گا اور اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔
اتنی سختی سے پیش نہ ہو جنید، ہمارا دل شوخ مزاجی کو ترس گیا ہے۔ میں سن رہا ہوں بابا، اپنا خواب سناؤ۔
میں صرف قاضی کو سناؤں گا،
مجھے اس کی باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جناب والا۔
سکون اور اطمینان سے سنو جنید، اپنا خواب بیان کرو۔
دن کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ میں اچانک خدا کا پیغمبر منتخب ہو گیا ہوں اور انسانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کر رہا ہوں۔
اچانک پیغمبر بن گئے، تمہارا معجزہ کیا ہے؟
میرا معجزہ یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔
مردوں کو کیسے زندہ کر دیتے ہو؟ ہاں
ہاں،
یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو بابا؟
پہلے اس قاضی کو قتل کروں گا، پھر کچھ دیر بعد اسے زندہ کر دوں گا۔
حضور، اسے حکم دے کے میری گردن پر سے تلوار کو ہٹا لے، یہ حقیقت میں پاگل ہے۔
کیا تمہیں شک ہے جنید کہ پیغمبر خدا کے اذن سے مردے کو زندہ کر دیتا ہے؟
مجھ پر خدا کی لعنت ہو جو ایسے حکم پر شک کروں بابا، لیکن تو تو خدا کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہے تو نہیں؟
لیکن تم نے خود دن کے وقت کے خواب کو صحیح کہا ہے۔
میں نے پیغمبر کے خواب کا کہا تھا جو صحیح ہوتا ہے۔
ہاں صحیح کہا تم نے۔
میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں بواب، ہم تمہاری باریک بینی اور ہوش مندی سے خوش ہوئے، اپنی حاجت بیان کرو۔
میری تین حاجتیں ہیں۔
ہاں بیان کرو۔
پہلی یہ کہ عبید تائی جسے بے گناہ قید کیا ہوا ہے آزاد کر دیں۔ دوسری یہ کہ اس قاضی کو جھوٹی تعبیر بیان کرنے پر قید کر دیں۔ اور تیسری یہ اپنے اس وزیر ابن روی کو حکم دے کہ عبید اور اس کی بیوی کو سی بی لے جائے اور سفر کے دوران ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے اور تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرے۔
صبر کرو ابن روی، تمہاری پہلی اور دوسری حاجت تو میں سمجھ گیا، لیکن تیسری حاجت میں نہیں سمجھ سکا۔
سنا ہے آپ کے وزیر نے ایک بے گناہ عورت کو سزا دی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے، اس نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔
ابا وہاب، یقین نہیں آتا کہ یہ تم ہو۔
تم عبید تائی ہو نا؟
اتنی جلدی بھول گئے مجھے ابا وہاب؟ تمہارا میرے اوپر بہت احسان ہے۔
نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا احسان و حق ہوتا ہے اس کی مخلوق پر۔
میں چاہتا ہوں کہ کچھ دوں تمہیں۔
نہیں نہیں نہیں، اسے کسی ایسے شخص کو دو جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔